इशिका राधिका की हेल्थ अपडेट लेने के लिए सिंघानिया मेंशन आई हुई थी। उसने जैसे तैसे करके राधिका को तो देख लिया था, लेकिन उसे देखने के बाद इशिका को और भी गड़बड़ महसूस हुई। सिंघानिया मेंशन के बाहर इशिका धीमे कदमों से आगे की तरफ जा रही थी। उसके दिमाग में राधिका के ही ख्याल चल रहे थे कि तभी वहां पर अभिमन्यु आ गया। अभिमन्यु ने भले ही सिंघानिया मेंशन में कुछ ना कहा हो, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इशिका पर डाउट हो गया था। अभिमन्यु ने इशिका को अपना मास्क निकालने के लिए कहा। अभिमन्यु धीमे कदमों से चलते हुए इशिका की तरफ आते हुए एक बार फिर बोला, अपना मास्क उतारो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम इशिका ही हो। मैंने तुम्हें क्रूज से बाहर जाने के लिए मना किया था, फिर तुम अपनी लाइफ खतरे में डालकर कैसे यहाँ आ सकती हो। मास्क उतारो इशिका, हम अभी के अभी वापस क्रूज जा रहे हैं। अभिमन्यु के शब्द काफी सख्त थे और उसकी आवाज से उसका गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। इशिका को जिसका डर था वही हुआ। अभिमन्यु ने उसे पहचान लिया था और उसे वापस ले जाने की बात कह रहा था। इशिका ने गहरी सांस ली और अपनी टोन को बदलते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, आपको सच में अपनी पत्नी के जाने का सदमा लगा है। मैं इशिका नहीं, उसकी फ्रेंड ईशानी हूँ। वो तो तुम्हारा मास्क उतारने के बाद पता चल जाएगा। अगर तुम इशिका की फ्रेंड ईशानी हो तो अपना मास्क उतार क्यों नहीं देती? अगर तुम अपना मास्क नहीं निकालोगी तो मैं ये खुद कर लूँगा। अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा और अपना हाथ इशिका की तरफ बढ़ाया। वो कुछ कदम पीछे हो गई। अभिमन्यु गुस्से से इशिका को घूर रहा था, तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी के अंदर से माया और तरुण बाहर निकले। गाड़ी के अंदर रूही थी। इशिका को गए हुए काफी वक्त हो गया था, इस वजह से वो लोग वहां पर आ गए थे। इशिका को अचानक वहां एक अनजान आदमी के साथ देखकर माया ने गुस्से में कहा, तुम तो यहां मिसेस सिंघानिया का हालचाल पूछने के लिए आई थी, फिर यहां एक गैर मर्द के साथ क्या कर रही हो? उन्हें वहां देखकर इशिका ने राहत की सांस ली। अभिमन्यु अब तक ईशानी की फैमिली से अनजान था। इशिका तुरंत अभिमन्यु से दूर हुई और जाकर रूही को अपनी गोद में उठा लिया। इशिका ने माया की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा हुआ मॉम आप यहाँ पर आ गईं। प्लीज इन्हें समझाइए कि ये मुझे कोई और समझ रहे हैं, मैं आपकी बहू हूँ और रूही मेरी बेटी है। तरुण और माया एक पल के लिए हैरान हो गए। उन्होंने सबके सामने इशिका को ये ड्रामा करने के लिए जरूर कहा था, लेकिन वो अपनी इस नकली पहचान को इस हद तक अपना लेगी ये उन्होंने नहीं सोचा था। तरुण ने इशिका को देखकर सिर हिलाया और फिर अभिमन्यु की तरफ देखकर बोला, देखो मिस्टर, तुम जो भी हो मेरी पत्नी से दूर रहो, अपनी ये गलत फहमी की दुकान कहीं और जाकर लगाना। रोड पर खास लाइट ना होने की वजह से तरुण अभिमन्यु को पहचान नहीं पाया था। वैसे भी दिन के वक्त अभिमन्यु थोड़ी देर के लिए ही बाहर निकला था। अभिमन्यु को धमकाने के बाद तरुण ने इशिका का हाथ पकड़ा और कहा, चलो डार्लिंग चलते हैं। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी। वो अपने मन में बोली, आई एम रियली सॉरी अभिमन्यु, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती, लेकिन फिलहाल मेरे लिए उस क्रूज पर छुपकर रहने से ज्यादा जरूरी मेरी माँ को बचाना है। गाड़ी के अंदर आते ही इशिका ने तरुण का हाथ झटक कर उसे अपने हाथ से अलग कर दिया था। उसकी इस हरकत पर तरुण ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, अंदर आते ही तुम्हारे तेवर ही बदल गए। कहीं वो लड़का तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है जिससे छुपने के लिए तुमने झूठ बोला हो? एक बात अच्छे से बता दूं, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, सच में खुद को मेरी बीवी मत समझ लेना। इशिका ने उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर किया और फिर तरुण के साथ वहां से चली गई। वहीं अभिमन्यु उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, क्या सच में वो लड़की इशिका नहीं थी? जहां तक मैं उसे जानता हूँ वो इस तरह शांत नहीं रहने वाली है, लेकिन इस लड़की की अपनी फैमिली भी है, यहाँ तक कि एक बच्चा भी। फिर मुझे ये क्यों लगा कि ये इशिका है? इसकी हाइट और फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल उसी की तरह लग रही थी। अभिमन्यु इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। उसने तुरंत पृथ्वी को कॉल किया और कहा, तुमने इशिका की सिक्योरिटी को अच्छे से देखा है ना? गलती से भी कोई वहां पर नहीं पहुंचना चाहिए और ना ही किसी को पता चलना चाहिए कि इशिका जिंदा है। बिल्कुल सर, मैंने एक भरोसेमंद इंसान को वहां पर छोड़ा है। सांची उनका पूरा ध्यान रख रही है और मैं रोजाना कॉल करके उनके बारे में पूछता हूँ, पृथ्वी ने जवाब दिया। अभिमन्यु को फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो उसने कहा, ऐसा करो, उसे कॉल पर कनेक्ट करो, मुझे इशिका से बात करनी है। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी और तुरंत सांची को कॉल किया। वहीं पृथ्वी का कॉल देखकर सांची थोड़ा हड़बड़ा गई थी। उसने घबराहट भरे स्वर में कहा, मैडम ने कहा था वो जल्द ही वापस आ जाएंगी, पिछले दो दिनों से मैं सबको झूठ बोल रही हूँ, उम्मीद है कि मैं पकड़ी ना जाऊँ। सांची ने पानी पीकर खुद की घबराहट को दूर किया और फिर कॉल रिसीव करके कहा, हेलो सर, मैडम बिल्कुल ठीक है और वो अभी दवाई लेकर सोई है। पृथ्वी के बजाय अभिमन्यु ने जवाब में कहा, ठीक है, मुझे इशिका की सोते हुए एक फोटो चाहिए। जी सर, अभी भेजती हूँ, सांची ने कहा और कॉल कट कर दिया। वो जल्दी से क्रूज के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में गई। उसने खुद से बड़बड़ाकर कहा, अगर मैंने इन्हें फोटो नहीं भेजी तो इनको शक हो जाएगा, जल्द से जल्द कुछ करना होगा। सांची ने सीसीटीवी फुटेज से एक फोटो निकाली और उसे थोड़ा बहुत एडिट करके अभिमन्यु को भेज दिया था। अभिमन्यु ने भी फोटो देखने के बाद ज्यादा शक नहीं किया और घर पर आ गया था।
वहीं दूसरी तरफ इशिका इस वक्त होटल रूम में रूही के साथ थी। वो उसके बालों को सहलाते हुए उसे सुला रही थी। तरुण और उसकी माँ दूसरे कमरे में रुके हुए थे। इशिका की आंखों में बार बार राधिका का चेहरा आ रहा था। उसने अपने मन में कहा, सोते हुए कोई इंसान सुकून में रहता है, लेकिन माँ के चेहरे पर सुकून नहीं था। उम्मीद है कल आदर सिंघानिया उन्हें अंतिम संस्कार में लेकर आए और माँ उस पेपर के जरिए मुझ तक कोई हिंट दे दें। मैं जिस राह पर निकल पड़ी हूँ वो बहुत मुश्किल है। जानती हूँ मुझे उसके लिए मेरे अपनों का भी साथ छोड़ना होगा, पर सच का पता लगाने के लिए मुझे ये बलिदान देना ही होगा। राधिका के बारे में सोचते हुए इशिका को नींद आ चुकी थी। अगली सुबह इशिका की नींद जल्दी ही टूट गई। आज ईशानी का अंतिम संस्कार होना था और वहां पर राधिका भी आने वाली थी। ये सोचकर इशिका जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। वहीं दूसरी तरफ सुबह के लगभग 10 बजे के करीब आदर्श राधिका को लेकर राजवंश विला पहुंच चुका था। आदर्श ने फिर से राधिका को इंजेक्शन दिया था ताकि वो किसी से मदद न मांग सके। गाड़ी से बाहर निकलने से पहले आदर्श ने राधिका के बालों को सही करते हुए कहा, आज तुम्हारी बेटी का अंतिम संस्कार है। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम गुस्से में हो। तुम्हें दुखी होना चाहिए राधिका। आंखों में आंसू भरो, ऐसे जाहिर करो जैसे तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई है, वरना लोग क्या सोचेंगे। राधिका से बात करते हुए आदर्श उसके बालों को सहला रहा था। राधिका की आंखें नम हो रही थी। वो जानती थी इशिका जिंदा है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू इस वजह से आ गई क्योंकि वो चाहकर भी इसके लिए कुछ कर नहीं पा रही थी। इन सब के बीच आदर्श राधिका को व्हीलचेयर पर बिठाकर अंदर लेकर पहुंचा। जान पहचान वाले लोग शोक प्रकट करने के लिए राधिका के पास आने लगे। इनमें से एक बुजुर्ग आदमी राधिका से बोला, मिसेस सिंघानिया, आपको हिम्मत बनाए रखनी होगी। अगर आज मिसेस राजवंश जिंदा होती तो वो आपको इस हाल में देखकर जरूर दुखी हो जाती। आदर्श ने आह भरते हुए कहा, इशिका के जाने के बाद से राधिका की ऐसी हालत हो गई है। मैंने इसे बहुत समझाया पर यह सुनने को तैयार तक नहीं है। इसकी हालत ऐसी हो गई है कि यह हिल तक नहीं पा रही है।
आदर्श पर कोई शक नहीं कर सकता था। आखिर इतने सालों तक वो राधिका के साथ काफी अच्छा बर्ताव करता रहा। अभिमन्यु ने सबके सामने दिखावा करते हुए आखिरकार इशिका के अंतिम संस्कार में आने के लिए हाँ कह दी थी। वहाँ इशिका की फोटो लगाई गई थी। उस फोटो की तरफ देखते हुए आदर्श ने झुककर राधिका के कान में कहा, क्या लगता है राधिका, आज अगर केशव ने इस फोटो को देखा तो वो पहचान जाएगा क्या कि ये तुम दोनों की बेटी है? राधिका कुछ रिएक्ट करती उससे पहले आदर्श ने हल्का मुस्कुराकर कहा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। कल मैंने तुम्हारे मोबाइल से उसे मैसेज कर दिया था कि तुम आज यहाँ नहीं आओगी और उसे भी आने से मना कर दिया था। आदर्श एक के बाद एक खेल खेल रहा था। पहले उसने राधिका को उसकी बेटी से अलग कर दिया और अब उसकी आखिरी उम्मीद केशव को भी वहाँ आने से रोक दिया था। राधिका कुछ नहीं कर पाई। इस बीच इशिका वहाँ पहुँच गई थी। वो तरुण और माया के साथ में थी। रूही को वो लोग वहां पर नहीं लेकर आए थे। इशिका ने भीड़ का फायदा उठाकर तुरंत उन्हें वहां पर छोड़ा और राधिका को ढूंढने लगी। वहीं आगे जाकर तरुण की नज़र अभिमन्यु पर गई तो वो मन ही मन बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वही आदमी है जो कल रात हमें मिला था। वो लड़की भी मुझे थोड़ी अजीब लगती है। तरुण अभिमन्यु की तरफ देख रहा था, तभी उसकी नज़र इशिका की फोटो की तरफ गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। इशिका ने अपने आप को छुपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो, लेकिन कोई भी इंसान अपने चेहरे को नहीं बदल सकता था। अरे बाप रे, वो जो लड़की ईशानी की दोस्त बनकर आई है, क्या वो मिस्टर राजवंश की पत्नी है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी बहुत दोनों की शक्ल मिल रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। इत्तफाक ही होगा, तरुण ने धीरे से कहा। वो काफी हड़बड़ा गया था। वहीं अभिमन्यु को भी मजबूरी में सबके सामने दुखी होने का दिखावा करना पड़ रहा था। उसके साथ वसुधा जी भी थीं जो अभिमन्यु को संभाल रही थीं। इस भीड़ के बीच इशिका ने जल्द ही राधिका को ढूंढ लिया था। वो उसके पास गई। आदर्श ने मास्क के साथ भी उसे पहचान लिया था। उसने इशिका को राधिका के पास आने से रोकते हुए कहा, मिस, तुम तो वही हो जो कल रात हमारे घर पर आई थी। क्या फिर से मिस्टर केशव सिंघानिया ने तुम्हें मेरी वाइफ का हालचाल जानने के लिए भेजा है? जी बिल्कुल, मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी, बस आखिरी बार मिसेस सिंघानिया से मिलने आई थी, इशिका ने जवाब दिया। वो राधिका के पास आने लगी। आदर्श उसे रोकना चाहता था, लेकिन एक आदमी उसके पास शोक प्रकट करने के लिए आ गया था। उसका फायदा उठाते हुए इशिका जल्दी से राधिका के पास बैठी और बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, माँ, आपको क्या हो गया है? मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आप भी ठीक हो जाइए। राधिका से बात करते हुए इशिका ने उसके हाथ को पकड़ा और उसका कागज का टुकड़ा ले लिया था। राधिका ने उसे देखकर पलकें झपकाईं। कोई और इशिका को पहचाने या न पहचाने, लेकिन राधिका कभी गलती नहीं कर सकती थी। इशिका आगे कुछ कहती उससे पहले आदर्श ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी पत्नी को ठीक होने में टाइम लगेगा। डॉक्टर ने कहा है कि इसे आराम की जरूरत है। अब प्लीज वापस आकर इसे डिस्टर्ब मत करना।
इशिका ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और दूसरी तरफ आ गई थी। इशिका ने पेपर को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गई थीं। उसने सिर्फ सेफ्टी के लिए वो पेपर राधिका के हाथ में छोड़ा था। उसे नहीं पता था कि राधिका उसका इतना इस्तेमाल भी करेगी। इशिका ने राधिका का मैसेज पढ़ते हुए अपने मन में कहा, आदर्श तुम्हें मारना चाहता है इशिका, प्लीज मुझे यहाँ से बचाओ। राधिका ने उससे मदद मांगी थी और इशिका ने मैसेज देख भी लिया था। अब वो सर्द निगाहों से आदर्श की तरफ देख रही थी जो राधिका के पीछे व्हीलचेयर के पास खड़ा था। इशिका ने मैसेज तो देख लिया है लेकिन वो राधिका की हेल्प कैसे करेगी। चलिए अगले पड़ाव पर मिलते हैं और पढ़कर रेटिंग दीजिएगा और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा। एक और बात, अगर आपको कहानी लंबी लगती है, इंटरेस्टिंग नहीं लगती, तो आप मेरी बाकी किसी और कहानी को पढ़ लीजिए। मैं तो अपने तरीके से ही लिखूंगी और जब स्टोरी पूरी हो जाएगी तभी उसे खत्म करूंगी। आपके कहने से जल्दबाजी में तो खत्म करने से रहा।